मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFAIS के आज 12 जून 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे कुछ सूचनाएं देनी होती हैं, तो दो तीन सूचनाएं हैं कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन कल शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलती रहेंगी और साथ ही साथ कल शनिवार को ही आपको एक वीकली क्वेश्चन साप्ताहिक प्रश्न दिया जाता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है और इसका उद्देश्य यही है कि आप अभ्यास करके अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अच्छा उत्तर लिखने के योग्य बना सके। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं जैव विविधता की क्षतिपूर्ति इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। जब आप रेडियो न्यूज कल के सुन रहे होंगे तो उसमें आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी के भाषण का बड़े विस्तार के साथ चर्चा की गई है, उनके भाषण की है ना, उन्होंने अर्थव्यवस्था के ऊपर भाषण दिया है, वो एक औद्योगिक संगठन को संबोधित कर रहे थे। फ्रेंड्स उसमें दो तथ्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और सच पूछे तो ये दो तथ्य कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले हुए ही हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल, ये शब्द उसमें आए। उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि जिन वस्तुओं के लिए हम विदेशों पर निर्भर हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उन वस्तुओं को भारत में ही तैयार करें और तैयार करके हम दुनिया के निर्यातक बन जाएं। तो इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि हम अपने इंपोर्ट को कम करें, और सीधी सी बात है कि जब हम अपने इंपोर्ट को कम कर लेंगे और एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, उन्होंने ये बात कही। तो ये तो मैंने सिंपल तरीके से आपको ये बात बताई है। नो डाउट कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर के अब आप देखिए कि आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, एडिटोरियल कमेंट्स पढ़ने को मिल रहे हैं और इस पर एक बहस की शुरुआत हो गई है, क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो अमेरिका भी करने लगा है, दूसरे देश भी करने लगे हैं, तो जब सभी आत्मनिर्भरता की बात करने लगेंगे तो फिर वैश्वीकरण की जरूरत कहां रह जाएगी। अगर भारत ये चाहेगा कि हम अपने इंपोर्ट को कम करें तो दुनिया के दूसरे देश भी चाहेंगे कि हम सभी अपने अपने इंपोर्ट को कम करें, तो फिर हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे, तो इस तरह की बहस शुरू हो गई है, तो उस पर आपका ध्यान रहना चाहिए। यहां जो मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि देखिए जब प्रधानमंत्री जी इस तरह के कोई भाषण देते हैं, इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उनका भाषण सुन सकें, और अगर नहीं सुन पाते हैं, देखिए आपकी पसंदगी नापसंदगी का सवाल नहीं है यहां, तो सीधी सी बात है कि आपके सिविल सर्विस में इससे मदद मिलेगी, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री कोई बात कह रहे हैं तो अपने आप में वजन रखता है, वो मायने रखता है ना। तो आप पूरा भाषण सुने, और अगर नहीं भी सुन पाते हैं तो न्यूज में अगर विस्तार के साथ बताया जाता है तो उसे भी आप ध्यान से सुने, क्योंकि मैंने देखा कि स्टूडेंट कहता है अरे न्यूज में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा ये कहा ये कहा यही बताया जा रहा है, तो उससे हमारा क्या लेना देना यार, कोई कॉन्क्रीट न्यूज मिले तो बात बने। नहीं, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कॉन्क्रीट न्यूज उसी से ही निकलती है, उसी से ही प्रश्न तैयार किए जाते हैं, है ना, क्योंकि न्यूज का एक वातावरण बनता है पूरे के पूरे देश में और वहां से फिर मेंस के क्वेश्चंस लिए जाते हैं। दोस्तों कोविड के मामले में आपने देखा कि अभी भी भारत सरकार ये कह रही है कि हमारा कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, यानी कि सामुदायिक संक्रमण हमारा नहीं हुआ है, और इसके बारे में बकायदे तर्क दिए गए हैं, तो अभी तक हम कम से कम इस मायने में तो सुरक्षित हैं। और बकायदे तर्क ये दिया गया है कि देखिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा मिल रहे हैं, कंटेनमेंट क्षेत्रों में ज्यादा मिल रहे हैं और देश के कुछ हिस्सों में ही मिल रहे हैं, तो इसे हम कम्युनिटी संक्रमण नहीं मानते, और एक अच्छी बात यह है कि स्वस्थ होने का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रत्येक 1 लाख पर जो संक्रमण दर है वो भारत में अभी सबसे कम है और मृत्यु दर भी सबसे कम है। खासकर कोरोना की बात इस तरह की जो मैं आप लोगों से बताता हूं वो उसका एक पर्पज होता है, जनरल स्टडीज की दृष्टि से नहीं आपके मनोविज्ञान की दृष्टि से, ताकि आप मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को मजबूत महसूस कर सके, और वैसे भी आप युवा हैं तो युवाओं में तो वैसे ही इतनी ज्यादा इम्यून पावर है कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते कि बस थोड़ा सा आप ध्यान रखें। दोस्तों बैड बैंक के बारे में फिर से बात होनी शुरू हो गई है, बैड बैंक को बैड बैंक ही कहते हैं, इसका अनुवाद मत कर दीजिएगा बुरे बैंक, दरअसल ये वे बैंक होते हैं कि जो बुरे बैंक हो चुके हैं उनके उद्धार के लिए काम करते हैं, बैड बैंक है ना, इस तरह के बैंक की कल्पना की जा रही, कुछ देशों में है, विदेशों में है। भारत में भी अब मांग की जा रही है कि भैया बैड बैंक बनाया जाए, हालांकि कुछ हैं अभी अस्तित्व में है लेकिन वो कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब यह एक ऐसा बैंक होता है कि जो बैंक डूबने वाले हैं, जिनका एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया, डूबने वाला तो नहीं कहना चाहिए, जिनका एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी संपत्तियों को ये खरीद लेते हैं, बुरी संपत्तियों को खरीदते हैं, और बुरी संपत्तियों को खरीदने के बाद फिर उनको बेचने का काम करते हैं, ठिकाने लगाने का काम करते हैं। तो बैंकों का जो एनपीए है, जो डूबत पैसा है आप कह लीजिए, तो बैड बैंक के जरिए वो कम से कम उनकी थोड़ी बहुत वसूली हो जाती है। तो ये बैड बैंक है, बेहतर होगा कि इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लें, और अखबारों में भी आना शुरू हो गया है, इकोनॉमिक टाइम्स ने उस पर आज एक एडिटोरियल कमेंट भी किया है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर जो मैंने चुना है, जैव विविधता की क्षतिपूर्ति। देखिए कल मैंने आप सबसे चर्चा की थी कि जो बागजन आयल कुआं है, जो असम के तिनसुकिया जिले में है, उसमें आग लगी, जो आयल इंडिया लिमिटेड का है, और आग लगने के फलस्वरूप जो भी हुआ तो वो एक राष्ट्रीय आपदा के पक्ष में, मतलब राष्ट्रीय आपदा का एक टॉपिक था। थोड़ी छोटी सी एक घटना है, छोटी सी नहीं कहनी चाहिए लेकिन एक घटना है राष्ट्रीय आपदा से जुड़ी हुई। आज के अखबारों में आपने देखा होगा कि अब उसका कोई फॉलोअप, उसकी फॉलोअप न्यूज नहीं है, बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ अखबार होते हैं जो इन्हें उठाते हैं और दूसरे रूप में उठाते हैं। उदाहरण के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज इस पर एडिटोरियल लिखा है, राइट? एडिटोरियल में उसने जो बातें कही है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है, देखिए ये घटना असम में घटी है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। तो अब ये जो आग लगी इस ऑयल कुएं में, तो उसकी वजह से ठीक है कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, जैसे दो लोगों की मृत्यु हो गई, और उसमें तो एक हमारे नेशनल लेवल के फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हुई। चलिए तो जो जन धन की हानि होगी उसकी तो क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी, राइट? अक्सर यही होता है। लेकिन इसमें जो प्रश्न उठाया गया है वो ये कि इसके कारण जो पर्यावरण की हानि हो रही है उसका क्या? और इनफैक्ट इसमें पर्यावरण की बात नहीं की गई है बल्कि जैव विविधता की बात की गई है, और जैव विविधता की बात करने के लिए उन्होंने दो तीन बकायदे एग्जाम्पल दिए हैं कि उसका क्या होगा कुएं में आग लगने से। अब देखिए कि क्या हुआ, ये नाम आपके दिमाग में होने चाहिए क्योंकि इसी तरह से प्री एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक वेटलैंड है, उसका नाम है मागुरी मोतापुंग वेटलैंड, जिसे आप हिंदी में आर्द्र भूमि कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड और जैव विविधता का क्षेत्र है, पक्षी और जैव विविधता का क्षेत्र, और 1996 से यह एस्टेब्लिश है, और जहां आग लगी है उससे केवल ये 500 मीटर की दूरी पर है। और दोस्तों यहां जितनी भी जैव विविधताएं थी, लगभग वहां एक नदी भी है जिसको डिब्रू नदी कहते हैं, उसमें मछलियां हैं, 80 प्रकार की मछलियां हैं, और ये बर्ड सेंचुरी है तो लगभग 300 प्रकार के बर्ड्स हैं, तो ये सेंचुरी पूरी तरह से नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है, ये जैव विविधता का विनाश है। अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? ठीक है, दूसरी चीजों की तो क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। इसी तरह से यहां एक और नेशनल पार्क है, वो है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये लगभग 800 मीटर पर है, यानी कि 1 किलोमीटर मोटे तौर पर, इसका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इसमें प्रश्न ये उठाया गया है कि ये जो जैव विविधता का जो विनाश हो रहा है और जिसकी क्षतिपूर्ति कभी कभी तो ऐसा होता है कि हो ही नहीं सकती, और अगर आप करेंगे भी तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, इसके बारे में भी हमारे पास बकायदे इस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज होनी चाहिए कि हम क्या करें। तो दोस्तों जब इस तरह के विनाश होते हैं तो उसके बारे में कोई कानून नियम है, इसका कोई उल्लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं मिलता है। लेकिन आपके सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन की दृष्टि से मैं दो तरह की बातें आपको बताना चाहूंगा कि दो तरह की स्थितियां हैं। पहला है प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, और इससे संबंधित सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन में पिछले साल या पिछले से पिछले साल क्वेश्चन भी पूछा गया था। इंग्लिश में है ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, देखिए कंपनसेटरी हिंदी में प्रतिपूरक है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, शॉर्ट फॉर्म में इसका बहुत अच्छा नाम है कैंपा, कैंपा कोल आप कहते हैं ना, CAMPA, कैंपा। और जो दूसरा, जो दूसरी व्यवस्था की गई है, ये आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट एसेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। यानी कि अगर कोई उद्योग लगाया जा रहा है तो इस उद्योग के लगाए जाने से, या कोई भी परियोजना शुरू की जा रही है तो उस परियोजना के शुरू करने से वहां का जो पर्यावरण है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका एसेसमेंट करना। तो ये दो बकायदे आपके सिलेबस में हैं। और हमारे जो ऑनलाइन के पेड स्टूडेंट हैं उन्हें मैं याद दिलाना चाहूंगा, दोस्तों इन दोनों ही टॉपिक्स पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, राइट। यहां मैं थोड़ा सा आप सबसे एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप जिस अनुशासन से लेक्चर्स सुन रहे हैं आप उस अनुशासन को तोड़िए मत, उस अनुशासन से आप सुनते रहिए। जिस सब्जेक्ट के आप लेक्चर सुन रहे हैं उनको सुनते रहिए। जब मैं ये कहता हूं कि ये आपको प्रोवाइड किए गए हैं और कोशिश कीजिए कि इसे भी सुन लें, तो आप इसे हट करके सुने, इसके लिए थोड़ा सा आप अतिरिक्त समय निकाल लें, भले ही आपने उस विषय को अभी टच नहीं किया। जैसे अभी आपको ये पर्यावरण में लेक्चर मिलेंगे, आपने पर्यावरण का सुनना शुरू नहीं किया है, तो बट नेचुरल है कि जब आप बीच के इन टॉपिक्स को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन बेहतर है कि एक बार सुन लेना चाहिए। आपको देखिए 2 वर्ष का समय दिया गया और साथ ही साथ आप किसी भी एक लेक्चर को 4 बार सुन सकते हैं, तो ये सहूलियत आपको इसीलिए प्रदान की गई है। तो अभी आप एक बार सुन लीजिए, बाकी आपके 3 चांस रहेंगे, है ना। तो आपको इस तरीके से अपनी अपना प्लान करना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने इसके बारे में जानना चाहा है तो अभी मुझे अचानक ध्यान आ गया, तो मैं उसकी भी चर्चा यहां कर दी है। तो दोस्तों, ये जो प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण है, इसके बारे में बहुत संक्षिप्त यही है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई योजना शुरू करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो अब वहां कुछ वनों को नष्ट करना पड़ेगा, कुछ और होगा, तो उससे कितना नुकसान होगा। जब ये हो जाता है कि कितना नुकसान होगा, इसीलिए इसके लिए सरकार से आपको अनुमति लेनी पड़ती है। तो सरकार कहती है कि इस परियोजना से आपके 50 करोड़ रुपए का नुकसान होगा पर्यावरण को, तो आप 50 करोड़ रुपए बकायदे एक फंड में जमा कर देते हैं। देखिए ना, कोष, आप फंड में बकायदे जमा कर देते हैं और सरकार फिर इस 50 करोड़ रुपए से उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए दूसरी जगह कहीं वन वगैरह लगाने का काम करती है, है ना। समय नहीं है कि मैं इसे बहुत ही विस्तार के साथ आपके सामने रख सकूं, लेकिन जब आप सब लेक्चर सुनेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, हमेशा की तरह मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूं, आप उसे देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। ऋचा, आपका मेल मिला और मैंने बड़े ध्यान से सुना, बहुत ही खूबसूरत भाषा में खूबसूरत भावनाओं और विचारों के साथ आपने मेल लिखा है। मैं आपकी भावनाओं का पूरा पूरा सम्मान करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी ये भावनाएं और आपकी ये विचार आपको जीवन के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, मेल लिखने वाले कोई कुछ दूसरे दोस्तों के नाम हैं, तबस्सुम जहां, अंकुर मलामे भंडारा महाराष्ट्र से, प्रणव तिवारी और राहुल राणा, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। 2 दिनों तक आप सब स्वस्थ रहें, अपना और अपने लोगों का ध्यान रखें, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।